समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के 4:30 और 21 सेकंड का समय और समाचार पत्रिका कार्यक्रम परिक्रमा के आज के संस्करण में आपके साथ आपके स्वागत के साथ हम उपस्थित हैं। आज के इस सफर में आपके साथ हूं मैं, आप ही का अपना रवि कपूर, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में जानेंगे देश दुनिया के समाचार, चलेंगे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए और जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को कहा अलविदा।
हेलो रवि, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट रवि कपूर। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these of the next 30 minutes।
जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी कि विश्व परिवार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, जो समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था और 1995 से ये सिलसिला आज तक जारी है। प्राणी जगत में अभिषेक परिवार सबसे छोटी इकाई है या फिर इस समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है? ये सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है और अगर सीधे साधे शब्दों में कहें ना अभिषेक, तो परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी दुष्कर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या फिर है, उससे अलग होकर उसके अस्तित्व को सोचा भी नहीं जा सकता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता कितने ही परिवर्तनों को स्वीकार करके अपने को परिष्कृत कर ले, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई भी आंच नहीं आई। वे बने और बनकर भले टूटे हों, लेकिन उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हम साथ साथ हैं, जैसे कि वर्षों से हम और हमारे श्रोता।
फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है।
तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला अपने इस कार्यक्रम का समाचार सुर्खियों से।
टॉप लीडर्स कैंपेनिंग फॉर द पार्टी कैंडिडेट्स एंड अलायंस फॉर फिफ्थ एंड रिमेनिंग फेजेस ऑफ लोकसभा इलेक्शंस।
राजस्थान में कोलिहान खदान में फंसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सभी 15 अधिकारियों को बचाया गया।
एक्सएफएस मिस्टर एस जयशंकर सेज चाबहार पोर्ट विल बेनिफिट एंटायर रीजन एंड अ नैरो व्यू शुड नॉट बी टेकन ऑफ इट।
सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वांग आज चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट राजस्थान रॉयल्स टू टेक ऑन पंजाब किंग्स इन गुवाहाटी दिस इवनिंग। एंड नाउ रवि, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडियन विच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द 6G टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज द 6G टेक्नोलॉजी इन ब्रीफ रवि? 6G विल ऑपरेट एट टेट्राहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड्स, डिलीवरिंग अ पीक डेटा थ्रूपुट ऑफ 1000 गीगाबिट्स विद द एयर लेटेंसी ऑफ लेस देन 100 माइक्रोसेकेंड्स। When comparing 5G and 6G network speeds, 6G is predicted to be 100 times faster than 5G with improved reliability and broader network coverage. And also, let's talk about what 6G will enable us to do. Well, one of the goals of the 6G internet is to support 1 microsecond latency communications. This is 1000 times faster or 1 by 1000th latency than 1 millisecond throughput. The 6G technology market is expected to facilitate large improvements in the areas of imaging, presence technology and location awareness. And Electronics and IT Secretary S. Krishnan today said that 6G technology has the potential to strengthen the nation's digital economy and enhance productivity. Addressing the Bharat 6G 2024 conference in New Delhi, Mr. Krishnan said the growth in 6G technology can have the same impact as the first industrial revolution. He further highlighted that 6G will lead to large data generation. and it will provide better input for artificial intelligence to learn and smarten itself. Mr. Krishnan urged the industry leaders of the conference to collaborate for a better digital infrastructure. It is an opportunity for industry players to engage, collaborate, and shape the future of communication. And Ravi, India actively participated in shaping the International Telecommunication Union's framework for 6G, recently finalized by the UN Telecom Agency. And the Department of Telecommunications emphasized connectivity, intelligence, and sustainability in 6G technology.
वैसे अभिषेक, जानकारी तो हमारे पास 6G के बारे में और भी है अपने श्रोताओं से साझा करने की, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आपके मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी है वो 4G की है या 5G की है?
Right now, I think it's 4G.
4G. मेरे मोबाइल में 5G है. Anyhow, निश्चित रूप से आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही. भारत 6G 2024 सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो तकनीकी नवाचार में भारत के कौशल को प्रदर्शित करता है. हाल ही में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक हाई स्पीड 6G संचार सेवाओं को शुरू करने के लिए एक परिकल्पित दस्तावेज का अनावरण किया और भारत में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी की पहचान तथा अनुसंधान एवं परिनियोजन के लिए भारत 6G प्रोजेक्ट भी शुरू किया. मिशन का उद्देश्य भारत को उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है. ये भारत को सस्ते 6G दूरसंचार प्रणालियों के लिए बौद्धिक संपदा उत्पादों और समाधानों के एक प्रमुख विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के साथ साथ भारत के तुलनात्मक लाभों के आधार पर 6G अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना चाहता है. भारत के 6G प्रोजेक्ट को दो चरणों, पहला चरण वर्ष 2023 से 2025 तक और दूसरा चरण वर्ष 2025 से 2030 तक कार्यान्वित किया जाएगा. अभिषेक, सरकार ने परियोजनाओं की देखरेख और मानकीकरण, 6G उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम की पहचान, उपकरणों और प्रणालियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने तथा अन्य बातों के अलावा अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त का पता लगाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक शीर्ष परिषद का गठन किया है. और अभिषेक, यही नहीं, काउंसिल का मुख्य फोकस नई तकनीकों जैसे कि टेराहर्ट्स संवाद, रेडियो इंटरफेस, टैक्टाइल इंटरनेट, कनेक्टेड इंटेलिजेंस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G डिवाइस हेतु नए एनकोडिंग तरीके और वेबफॉर्म चिपसेट होगा. पहले चरण में अनुसंधान विचारों, जोखिम भरे माध्यमों एवं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि POC परीक्षणों के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा. चरण दो के हिस्से के रूप में वैश्विक सहकर्मी समुदाय द्वारा स्वीकृति के लिए वादा और क्षमतावान विचारों एवं अवधारणाओं को पूरा करना, उनके उपयोग एवं लाभ तथा व्यवसायीकरण के लिए कार्यान्वयन IP और टेस्ट बेड बनाने के लिए उचित समर्थन भी दिया जाएगा.
यस, सो रवि, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज 6G हार्मफुल टू ह्यूमंस?
जी बिल्कुल.
वेल, 6G इंटरनेट, लेट मी टेल अवर लिसनर्स, इज सेफ एंड ऑल्दो इट वुड इन्वॉल्व स्ट्रॉन्गर फ्रीक्वेंसीज, these frequencies would be harmless since they are non-ionizing. And also let's talk about how 6G will change the world. The innovative technology surrounding the deployment of a 6G network has a potential to reshape wireless communication. The lightning fast speeds, ability to handle larger chunks of data, and stronger wireless signals can make global connectivity a reality. So, Ravi, now please tell our listeners about the need of 6G technology, please.
अभिषेक, शायद लोग जानते नहीं हैं या फिर उनको जानकर हैरानी होगी कि भारत विश्व स्तर पर 1.2 बिलियन डिजिटल ग्राहकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में 2.5 गुना तेजी से बढ़ी है और ये एक असाधारण डिजिटल बढ़त है. इस अवधि में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 60 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन हो गई और इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 850 मिलियन हो गई. इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है. तो क्या इतना कम है ये जानने के लिए कि भारत को 6G की जरूरत है? तो अभिषेक, अब बताइए कि 6G का प्रभाव क्या होगा?
Well, Ravi, 6G can reshape human interactions, machine communications, and data interactions. integration of artificial intelligence and exploration of quantum technologies are crucial for innovation in education, agriculture, and healthcare. And lastly, establishing a seamless integrated optical and wireless network, especially in rural areas, is necessary. But Ravi, as it is said, with technology we can achieve the unimaginable. Let's hope for the best. And the most exciting thing is that we get an inch closer to 6G every day. Tomorrow's internet is being built today.
Ji bilkul. और अभिषेक, अब समय हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास आज विशेष क्या है।
यस, एंड द 3-डे हिस्टोरिक शिप पार्वती मोंगरी मेला ऑब्जर्व्ड एट सर दबार इन ब्लॉक पंचारी ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर कॉमन्स ऑन ट्यूजडे विद ट्रेडिशनल फर्व एंड गेटी। अ लार्ज नंबर विजिटर्स अराइव्ड एट सर दबार ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 3-डे मेला। पीपल फ्रॉम भामाग, पंचारी, उधमपुर, Chenani, Ramnagar, Jammu converge Mongri every year to celebrate the Mela and pay obeisance at the Shiva Parvati Cave Shrine. We have more on this from a correspondent, Gulshan Raina.
Mongri Mela is a socio-religious event that brings together many people at Sar Dabar in Block Panchari of District Udhampur, where devotees of Lord Shiva forget their caste, creed and language and share an experience of faith with full devotion. Mongri Mela is celebrated in the month of May in the remote area of Tenth Gully, around 26 kilometers falling in Panchari area of Udhampur district. The Mela is de facto of sanctity of the beholder of Supreme Lord Shiva and Shakti Mata Parvati, his consort. The Mela is celebrated for 3 days every year at Sar Dabar. Sar in Hindi world nomenclatized as water, and in this particular case Sar Dabar, which in the time immortal was a lake which by the wishes of Almighty dried, and now Dabar is a dense forest giving a vibrant and salubrious look. Mongri is a small hamlet with 2 caves of magnanimity which are none less than other spiritual shrines spread over the hilly terrain of Himalayas. These caves came to limelight in September 1998. In the realm of dream, when the local gathered, and it was to their utmost astonishment on glimpsing these miraculous caves of Lord Ganesha and Shiv Parvati. And till date, an annual Mela is held on the 1st of Jet, Adeshi month, and people of all hues gather here. Though unbelievably, but fact is that Dio cave are of their sanctified reverence which speaks silently in divine tones. The caves are over millions year old, and none could ever tell exactly how old it is. The length of the Ganesha cave is too narrow with watery carpet and is around 20 feet, where one can have holy darshan of Lord Ganesha, pay obeisance and obtain blessing. It is a wonder of wonders that on each clear day the sun salutes these caves between 10 a.m. to 11 a.m. and rays which reflect over the pious and honey-dewed water of Kamsar stream. This is also locally spoken as Surya Shanan to these devas. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from RNU Akashwani, जम्मू।
तो अभिषेक, जम्मू और कश्मीर से अब चलते हैं हिमाचल शिमला की ओर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सभी 4 सीटों सहित 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी 1 जून को 7वें व अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे। इसी को देखते हुए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सभी 4 सीटों सहित 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी 1 जून को 7वें व अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे। इसी के मद्देनजर राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राज्य के विभिन्न स्थानों पर सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के तहत लगातार मतदाताओं को मतदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से लाहौल स्पीति के काजा तक चलने वाले साइकिलिंग एक्सपीडिशन का शुभारंभ किया। 20 मई तक आयोजित होने वाला 7 दिवसीय साइकिलिंग एक्सपीडिशन शिमला से होकर लाहौल स्पीति जिला में 15,256 फुट पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र तशीगंग तक लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। इस साइकिलिंग रैली में 6 लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से स्टेट इलेक्शन आइकन जसप्रीत पॉल व उनके साथी क्षितिज शिमला से टशीगंग जाएंगे और अन्य 4 साइकिलिस्ट नारकंडा तक इस एक्सपीडिशन का हिस्सा होंगे। अभियान दल 16 मई को कल्पा में भारत के प्रथम मतदाता स्वर्गीय श्याम शरण नेगी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन की शुरुआत की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन विभाग ने मंडी जिला के 44 वर्षीय साइकिलिस्ट जसप्रीत पॉल को स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया है। जसप्रीत पॉल एक साइकिलिस्ट होने के साथ साथ एक पेशेवर फोटोग्राफर भी है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
And from Shimla now we have a story from Agartala. Mango is one of the most sought after fruits in the country for its distinct taste and flavor. Well, the fruit relished by the young and the old alike attracts good market within the country and abroad as well. Tripura, which is known for mass production of rubber, betel nut and bamboo, also produces different types of mangoes. In a far-flung Kathalia rural development block of Sepahijala district of the state, a mango cultivator is producing different types of this luscious fruit. We have more details in this report filed by our Agartala correspondent, Kunal Shinde.
Come summer and the demand for one of the luscious fruit, mango, skyrockets in the market. There are distinct varieties of mangoes which are grown in different corners of the country. Tripura, which is home to some of the varieties of mangoes, is known for the production of Amrapali and Mallika varieties of the fruit. A mango cultivator from Nirbhaipur village in Kathalia RD block is playing an instrumental role in taking these particular varieties of mango to the people through the nursery and mango plantation spread over 2 hectares of land.
मैंने तो नर्सरी किया था 2003 साल से मेरे पिताजी नर्सरी किया था नर्सरी से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन कलम भी लगा रहा हूँ तो बहुत अच्छा चल रही थी पहले तो 15-20 साल तो अच्छा चल रहा है गवर्नमेंट ले रहे अभी गवर्नमेंट नहीं ले रहे लेकिन अभी पब्लिक डिलीवरी दे रहा हूँ बहुत अच्छा दे रहा हूँ मेरे पिताजी मेघालय पे ट्रेनिंग किया था तो अगरतला नागेश्वर पे ज्यादा बार ट्रेनिंग किया था हमने भी गया था साथ में तो अच्छा तरफ से ट्रेनिंग सीख लिया था तो इसका अनुसार में मैंने जो काम किया था बहुत अच्छा तरफ से सफल आया।
Amjad Rahman, while narrating the story of his father, Abdul Rahman, said that his father started cultivation of mango and also sold saplings of Amrapali, Himsagar and Mallika in his nursery since 2003. With more than 2 decades in this business, Abdul Rahman till date has sold saplings to the tune of nearly 1 crore rupees in and around Tripura. Perseverance and hard work are a prerequisite to achieve success. The efforts of Abdul Rahman in producing these 2 varieties of mangoes and taking them to the people will inspire more such cultivators in days to come.
अरे यहाँ पर अम्रपली और मल्लिका और हिमसागर तीनों भी है और भी चीज थी लेकिन गवर्नमेंट ने सप्लाई नहीं ले रहे इसलिए थोड़ा कमती हो गया मदर प्लान कमती बना दिया जो अच्छा आम है वो रहने दिया और जो थोड़ा खराब है वो काट दिया हर साल में तो आम तो 4-5 लाख का बेचता हूँ ज्यादा डिमांड तो त्रिपुरा में तो हम दे रहे हैं बाहर का जा रहे नहीं जा रहे उधर ही चलते बहुत अच्छा चल रहा है
कुणाल शिंदे फॉर परिक्रमा फ्रॉम आकाशवाणी अगरतला
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profiling, giving details of the number of phases, a date of polling, number of seats and other relevant facts. Let's know about the Kalyan constituency profile.
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं
2008 में अस्तित्व में आए कल्याण निर्वाचन क्षेत्र पर शुरुआत से ही शिवसेना का दबदबा रहा है लेकिन इस बार यहां मुकाबला शिवसेना बनाम शिवसेना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे 2014 से कल्याण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बार भी विकास के एजेंडा को लेकर वो हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं डॉ. शिंदे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के अलावा सड़क और रेल यातायात में सुधार तथा मेट्रो प्रोजेक्ट में अपने योगदान पर बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिद्वंदी हैं कल्याण डोंबिवली नगर निगम की पूर्व पार्षद शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे जमीनी स्तर से जुड़ी एक कार्यकर्ता के रूप में उनका जोरदार प्रचार किया जा रहा है 2019 के आम चुनाव में श्रीकांत शिंदे को 62% से भी अधिक वोट मिले थे। इस क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर महायुति गठबंधन का शासन है और इसीलिए इस बार भी श्रीकांत शिंदे के लिए ये मुकाबला कठिन नहीं लग रहा है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
In the fifth phase of Lok Sabha elections, voting will be held on 14 seats of Uttar Pradesh on May 20th. This also includes Lucknow Lok Sabha seat, which is one of the famous seats of the country. The BJP, which has been winning this seat for the last 8 elections, has made current MP and Defence Minister Rajnath Singh his candidate for the third time. SP has fielded Lucknow Central MLA Ravidas Mehrotra from the India Alliance on the seat. The Bahujan Samaj Party has made Sarwar Malik its candidate. Apart from this, 7 other candidates also trying their luck on this seat. In a series of Lok Sabha constituencies profile, today we bring you a report on the Lucknow seat.
There are 5 assembly constituencies under Lucknow Lok Sabha seat. These include Lucknow East, Lucknow West, Lucknow Central, Lucknow North and Kent Assembly. There are a total of 39,33,017 voters in this parliamentary constituency. These include 20,82,888 male voters, 18,49,960 female voters and 169 third gender voters. Congress has won the Lucknow seat 6 times and BJP has won 8 times. Vijay Lakshmi Pandit, sister of the country's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, became the first MP from the high-profile seat. Apart from this, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was a 5-time MP from Lucknow seat. In 2019, BJP's Rajnath Singh became MP from this seat by defeating SP candidate Poonam Sinha. In this election, BJP candidate Rajnath Singh got 6,33,026 votes. SP candidate Poonam Sinha, who came second in the election, had received 2,85,724 votes. Earlier in the 2014 general elections, Rajnath Singh had defeated Rita Bahuguna Joshi of Congress by 2,72,749 votes. In both the last elections, Rajnath Singh received more than 50% of the votes. Rajnath Singh is contesting as a BJP candidate for the third time in this election. In the alliance, SP's Ravidas Malhotra and BSP's Sarwar Malik are challenging him. All parties have intensified campaigning in support of their candidates. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
During the First War of Independence, on the 15th of May 1857, supreme command of the army was given to Mirza Mughal. Mirza Mughal was son of Bahadur Shah Zafar. He took a leading part in the First War of Independence of 1857. On the 15th of May 1857, a darbar was held in Red Fort and new officers of the Hindustani army were appointed by the emperor. The supreme command of this army was given to Mirza Mughal. He was titled as Commander-in-Chief Bahadur and his honorific title was Sahib-e-Alam.
In his capacity as Commander-in-Chief, Mirza Mughal worked as a liaison officer between the civil and military departments and formed a link with warriors on the one hand and the merchants and local chiefs on the other. He continued to play an important role in military administration. After the reoccupation of Delhi by the British, Mirza Mughal was captured on the 22nd of September 1857. The British took him near Khuni Darwaza and asked him to take off his clothes. He was shot dead and his body was driven to the Kotwali and laid down outside the building before he was buried. We salute this great nationalist.
We also remember Martyr Harpal Singh. He was in the English East India Company Army, but left it during the First War of Independence of 1857 and joined hands with rebel forces with a pledge to overthrow the oppressive foreign rule. He fought the British at several places and was finally caught during a confrontation. He was charged with mutiny against the British Empire and sentenced to 7 years jail. He was sent from Bombay to the Andaman Islands in April 1858, where he died due to physical torture in captivity on the 15th of May 1858.
We also remember Martyr Sukhdev Thapar. He was born on the 15th of May 1907 in Ludhiana. Sukhdev Thapar had witnessed the brutal atrocities that the Imperial British Raj had inflicted on India, which led him to join the revolutionary freedom fighters. He is remembered for his courageous attack in the Lahore conspiracy case. Bhagat Singh, Sukhdev Thapar and Shivaram Rajguru, some of the most revered figures of the Indian freedom struggle, were hanged on the 23rd of March 1931 at Husainiwala village of Firozpur district of Punjab. Sukhdev Thapar was just 24 years old when he became a martyr for his country.
In business news today, the benchmark indices Sensex and Nifty ended slightly lower today amid positive cues from the global share markets. The BSE Sensex slid 118 points or 0.16% to close at 72,987 points. The NSE Nifty slipped 17 points or 0.08% to settle at 22,201 points.
और अब चलते हैं अभिषेक खेल के मैदान में और जान लेते हैं वहां की हलचल। तो आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ये टीम एक जीत हासिल करके शीर्ष चार में पहुंचने की कोशिश करेगी। पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ में जाने से पहले ही चूक गई है। वैसे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अंक तालिका में 19 अंक के साथ शीर्ष पर है। और
Yes, and India's ace women's table tennis player Manika Batra became the first Indian woman paddler to break into the top 25 of the world women's singles rankings. She rose to a career best ranking of 24 following her success in the Southeast Smash last week.
और अब समय हो गया अभिषेक उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनका आज है जन्मदिन जयंती या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया से ली विदाई। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है कोंडिंडेरा मजप्पा करियप्पा का, जो भारत के पहले नागरिक थे जिन्हें प्रथम कमांडर इन चीफ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1899 को, लेकिन आपने इस दुनिया से विदा ली 15 मई 1993 को। करियप्पा ने जनरल के रूप में 15 जनवरी 1949 को पद ग्रहण किया था। इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। करियप्पा भारत की राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध थे। 1953 में करियप्पा सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में उनका सहयोग भारतीय सेना को सदा प्राप्त होता रहा।
James Neville Mason was born in 1909 on this day. He was an English actor. He achieved considerable success in British cinema before becoming a star in Hollywood. He was the top box office attraction in the UK in 1944-1945. His films include The Seventh Veil, 1945, The Wicked Lady, also 1945. He starred in Odd Man Out in 1947, and he was the first recipient of the BAFTA Award for Best British Film. And also, Ravi Madeline Yana Corwell Albright was born on this day in 1937. She was an American diplomat and political scientist who served as the 64th United States Secretary of State from 1997 to 2001. A member of the Democratic Party, she was the first woman to hold that post.
और अब बात कर लेते हैं अभिषेक भारत के एक सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर साहब के बारे में, जिनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 15 मई 1923 को। और इनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। अपना नाम उन्होंने एक लोकप्रिय ब्रांड से उधार लिया था, लेकिन बाद में यह तय करना मुश्किल हो गया कि दोनों में ज्यादा लोकप्रिय कौन है। जॉनी वॉकर की जो आवाज दर्शक सुनते थे वो आवाज उनकी बनाई हुई थी और उनकी वास्तविक आवाज भारी थी। उनकी मुख्य फिल्मों में शामिल हैं बाजी, आरपार, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेज 55, चौदहवीं का चांद, नया दौर, मधुमती, शिकार, आनंद शान और चाची 420 आदि। फिलहाल सुन लेते हैं उन्हीं पर पिक्चराइज ये बढ़िया सी मेटली।
सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए।
जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है।
Yes, and Brian Peter George Eno was born on this day. He's an English musician, songwriter and record producer and visual artist. Let's listen in to his hit track, The Big Ship, and is from his 1975 hit album, Another Green World.
चलते चलते हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को उनके आज जन्मदिन पर कह देते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स द डे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सुन लेते हैं उन्हीं पर पचाइज बहुत ही फेमस गीत।
दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा।
श्रोताओं से ले लेते हैं इजाजत, क्योंकि समय हो चला है। तो अनुमति दीजिए रवि कपूर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की।
यस, सो टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय एंड नमस्कार।